संबंध। अब वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। कृषि गौरक्षवाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। व्याख्या। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनकी वंश वृद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना, ये कर्म वैश्य में स्वाभाविक होते हैं। शुद्ध व्यापार करने का तात्पर्य है जिस देश में जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो, लोगों के हित की भावना से उस वस्तु को जहां वह मिलती हो वहां से ला करके उसी देश में पहुंचाना, प्रजा की आवश्यक वस्तुओं के अभाव की पूर्ति कैसे हो, वस्तुओं के अभाव में कोई कष्ट न हो पाए, इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के सामने अपने को वैश्य ही मानते हैं। कृषि वाणिज्य गौरक्षम कुसीदम तुर्य मुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तयो निशम। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 24वां अध्याय 21वां श्लोक। वैश्यों की वार्ता वृत्ति चार प्रकार की है, कृषि वाणिज्य गोरक्षा और व्याज लेना। हम लोग उन चारों में से केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं गायों और बछड़ों को चराया। मनु महाराज ने वैश्य वृत्ति में पशुनाम रक्षणम पहले अध्याय के 90वें श्लोक में ये बात कही, पशुओं की रक्षा करना। पर यहां भगवान अपने जाति भाइयों से मानो ये कहते हैं कि तुम लोग सब पशुओं का पालन उनकी रक्षा न कर सको तो कम से कम गायों का पालन और उनकी रक्षा जरूर करना। गायों की वृद्धि न कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु उनकी रक्षा जरूर करना जिससे हमारा गोधन घट न जाए। इसलिए वैश्य समाज को चाहिए कि वह गायों की रक्षा में अपना तन मन धन लगा दे, उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति बचाकर न रखे। गोरक्षा संबंधी विशेष बात। मनुष्यों के लिए गाय सब दृष्टियों से पालनीय है। गाय से अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। आज के अर्थ प्रधान युग में तो गाय अत्यंत ही उपयोगी है। गोपालन से गाय के दूध घी गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है। हमारा देश कृषि प्रधान है, अतः यहाँ खेती में जितनी प्रधानता बैलों की है उतनी प्रधानता अन्य किसी की भी नहीं है। भैंसे के द्वारा भी खेती तो की जाती है, पर खेती में जितना काम बैल कर सकता है उतना भैंसा नहीं कर सकता। भैंसा बलवान तो होता है पर वह धूप सहन नहीं कर सकता, धूप में चलने से वह जीभ निकाल देता है, जबकि बैल धूप में भी चलता रहता है। कारण कि भैंसे में सात्विक बल नहीं होता, जबकि बैल में सात्विक बल होता है। बैलों की अपेक्षा भैंसे कम भी होते हैं। ऐसे ऊंट से भी खेती की जाती है पर ऊंट भैंसे से भी कम होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। खेती करने वाला हर एक आदमी ऊंट नहीं खरीद सकता। आजकल अच्छे जवान बैल मारे जाने के कारण बैल भी महंगे हो गए हैं, तो भी वे ऊंट जितने महंगे नहीं है। यदि घरों में गायें रखी जाए तो बैल घरों में ही पैदा हो जाते हैं, खरीदने नहीं पड़ते। विदेशी गायों के जो बैल होते हैं वे खेती में काम नहीं आ सकते, क्योंकि उनके कंधे न होने से उन पर जुआ नहीं रखा जा सकता। गाय पवित्र होती है, उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है। गाय के गोबर गोमूत्र भी पवित्र होते हैं। गोबर से लेप किए हुए घरों में प्लेग हैजा आदि भयंकर बीमारियां नहीं आती। इसके सिवाय युद्ध के समय गोबर से लिपे हुए मकानों पर बम का उतना असर नहीं होता जितना सीमेंट आदि से बने हुए मकानों पर होता है। गोबर में जहर खींचने की विशेष शक्ति होती है। काशी में कोई व्यक्ति सांप काटने से मरसा गया था। लोग उसको मरा हुआ समझकर दाह क्रिया करने के लिए उसको गंगा किनारे ले गए। वहां पर एक साधु रहते थे। उन्होंने पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ। लोगों ने कहा इसको सांप ने काट दिया, ये तो मर गया। साधु ने कहा मरा नहीं है, तुम लोग गाय का गोबर ले आओ। गोबर लाया गया, साधु ने उस व्यक्ति की नासिका को छोड़कर पूरे शरीर में ऊपर नीचे गोबर का लेप कर दिया। आधे घंटे के बाद गोबर का फिर दूसरा लेप किया, इससे उस व्यक्ति के श्वास चलने लगे और फिर वो जी उठा। हृदय के रोगों को दूर करने के लिए गोमूत्र बहुत उपयोगी है। छोटी बछड़ी का गोमूत्र रोज तोला दो तोला पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। एक संतों को दमा की शिकायत थी, उनको गोमूत्र सेवन से बहुत फायदा हुआ। आजकल तो गोबर और गोमूत्र से अनेक रोगों की दवाइयां बनाई जा रही हैं। गोबर से गैस भी बनने लगी है। खेतों में गोबर गोमूत्र की खाद से जो अन्न पैदा होता है वो भी पवित्र होता है। खेतों में गायों के रहने से गोबर और गोमूत्र से जमीन की जैसी पुष्टि होती है, वैसी पुष्टि विदेशी रासायनिक खादों से नहीं हो सकती। जैसे एक बार अंगूर की खेती करने वाले ने बताया कि गोबर की खाद डालने से अंगूर के गुच्छे जितने बड़े बड़े होते हैं उतने विदेशी खाद डालने से नहीं होते। विदेशी खाद डालने से कुछ ही वर्षों में जमीन खराब हो जाती है, वह उपजाऊ नहीं रहती। परंतु गोबर गोमूत्र से जमीन की उपजाऊ शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। विदेशों में भी रासायनिक खाद से बहुत से खेत खराब हो गए, जिन्हें उपजाऊ बनाने के लिए वे लोग भारत से गोबर मंगवा रहे हैं और भारत से गोबर के जहाज भरकर विदेशों में जा रहे हैं। हमारे देश की गायें सौम्य और सात्विक होती हैं, अतः उनका दूध भी सात्विक होता है। उस दूध का सेवन करने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव शांत और सौम्य होता है। विदेशी गायों का दूध तो ज्यादा होता है, पर उन गायों में गुस्सा बहुत होता है, अतः उनका दूध पीने से मनुष्य का स्वभाव भी क्रूर होता है। भैंस का दूध भी ज्यादा होता है, पर वह दूध सात्विक नहीं होता, उससे सात्विक बल नहीं आता। सैनिकों के घोड़ों को गाय का दूध पिलाया जाता है, जिससे वे घोड़े बहुत तेज होते हैं। एक बार सैनिकों ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया, जिससे घोड़े खूब मोटे हो गए। परंतु जब नदी पार करने का काम पड़ा तो वे घोड़े पानी में बैठ गए। भैंस पानी में बैठा करती है, वो स्वभाव घोड़ों में आ गया। ऊंटनी का दूध भी निकलता है, पर उस दूध का दही मक्खन होता ही नहीं। उसका दूध तामसी होने से दुर्गति देने वाला होता है। स्मृतियों में ऊंट कुत्ता गधा आदि को अस्पृश्य बताया गया है। संपूर्ण धार्मिक कार्यों में गाय की मुख्यता है। जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन आदि 16 संस्कारों में गाय का, उसका दूध, घी, गोबर आदि का विशेष संबंध रहता है। गाय के घी से ही यज्ञ किया जाता है। स्थान शुद्धि के लिए गोबर का ही चौका लगाया जाता है। श्राद्ध कर्म में गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। नरकों से बचने के लिए गोदान किया जाता है। धार्मिक कृत्यों में पंचगव्य काम में लाया जाता है। जो गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र इन पांचों से बनता है। कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में गाय का घी आदि काम में आता है। रघुवंश के चलने में गाय की प्रधानता थी। पौष्टिक वीर्यवर्धक चीजों में भी गाय के दूध और घी का मुख्य स्थान है। निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से मुक्ति होती है। गाय की सेवा करने मात्र से अंतःकरण निर्मल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बिना जूती के गोचारण की लीला की थी, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। प्राचीन काल में ऋषि लोग वन में रहते हुए अपने पास गाय रखा करते थे। गाय के दूध घी से उनकी बुद्धि प्रखर और विलक्षण होती थी, जिससे वे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किया करते थे। आजकल तो उन ग्रंथों को ठीक ठीक समझने वाले भी कम हैं। गाय के दूध घी से वे दीर्घायु होते थे, इसलिए गाय के घी का एक नाम आयु भी है। बड़े बड़े राजा लोग भी उन ऋषियों के पास आते थे और उनकी सलाह से राज्य चलाते थे। गोरक्षा के लिए बलिदान करने वालों की कथाओं से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। बड़े भारी दुख की बात है कि आज हमारे देश में पैसों के लोभ से रोजाना हजारों की संख्या में गायों की हत्या की जा रही है। अगर इसी तरह गो हत्या चलती रही तो एक समय गोवंश समाप्त हो जाएगा। जब गायें नहीं रहेंगी तब क्या दशा होगी, कितनी आफतें आएगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब गायें खत्म हो जाएंगी तब गोबर नहीं रहेगा और गोबर की खाद न रहने से जमीन भी उपजाऊ नहीं होगी। जमीन के उपजाऊ न रहने से खेती कैसे होगी, खेती न होने से अन्न तथा वस्त्र कपास कैसे मिलेंगे। लोगों को शरीर निर्वाह के लिए अन्न, जल और वस्त्र भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। गाय और उसके दूध, घी, गोबर आदि के न रहने से प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी। गोधन के अभाव में देश पराधीन और दुर्बल हो जाएगा। वर्तमान में भी अकाल, अनावृष्टि, भूकंप, आपसी कलह आदि के होने में गायों की हत्या मुख्य कारण है। अतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालत में गायों की रक्षा करना, उनको कत्ल खाने में जाने से रोकना हमारा परम कर्तव्य है। गायों की रक्षा के लिए भाई बहनों को चाहिए कि वे गायों का पालन करें, उनको अपने घरों में रखें, गाय का ही दूध घी खाएं, भैंस का नहीं। घरों में गोबर गैस का प्रयोग किया जाए। गायों की रक्षा के उद्देश्य से ही गौशालाएं बनाई जाएं, दूध के उद्देश्य से नहीं। जितनी गोचर भूमियां हैं उनकी रक्षा की जाए तथा सरकार से और गोचर भूमियां छुड़ाई जाए। सरकार की गो हत्या नीति का विरोध किया जाए और सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह देश की रक्षा के लिए पूरे देश में तत्काल पूर्ण रूप से गो हत्या बंद करें। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। चारों वर्णों की सेवा करना, सेवा की सामग्री तैयार करना और चारों वर्णों के कार्यों में बाधा अड़चन न आए, सबको सुख आराम हो, इस भाव से अपनी बुद्धि योग्यता बल के द्वारा सबकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। यहाँ एक शंका पैदा होती है कि भगवान ने चारों वर्णों की उत्पत्ति में सत्व, रज और तम इन तीन गुणों को कारण बताया, उनमें तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की उत्पत्ति बताई, और गीता में जहाँ तमोगुण का वर्णन आया है वहां पर उसके अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह, ये सात अवगुण बताए हैं, 14वें अध्याय का 8वां और 13वें अध्याय का 17वां श्लोक। अतः ऐसे तमोगुण की प्रधानता वाले शूद्र से सेवा कैसे होगी, क्योंकि वह तो आलस्य, प्रमाद आदि में पड़ा रहेगा तो कैसे सेवा करेगा। सेवा तो बहुत ऊंची चीज है, ऐसे ऊंचे कर्म का भगवान ने शूद्र के लिए कैसे विधान कर दिया। इसका समाधान यह है कि गीता की दृष्टि से विचार किया जाए तो गीता में आया है सत्व गुण वाले ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण वाले मरकर पीछे मध्य लोक में अर्थात मृत्यु लोक में आते हैं, और तमोगुण वाले अधोगति में जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा, 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। इनमें भी वास्तव में देखा जाए तो रजोगुण के बढ़ने पर जो मरता है वह कर्म प्रधान मनुष्य योनि में जन्म लेता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते, 14 का 15वां। इन सब का तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य मात्र रज प्रधान है, रज प्रधान वालों में जो सात्विक, राजस और तामस तीन गुण होते हैं, उन तीनों गुणों से ही चारों वर्णों की रचना की गई है। इसलिए कर्म करना सब में मुख्य होता है, और इसी को लेकर मनुष्यों को कर्मयोनि कहा गया है, तथा गीता में भी चारों वर्णों के कर्मों के लिए स्वभावज कर्म, स्वभाव, नियत कर्म आदि पद दिए हैं। अतः शूद्र का परिचर्या अर्थात सेवा करना स्वभावज कर्म है, जिसमें उसे परिश्रम नहीं होता। मनुष्य मात्र कर्म योनि होने पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में विवेक विचार का विशेष तारतम्य रहता है और शुद्धि भी रहती है, परंतु शूद्र में मोह की प्रधानता रहने से उसमें विवेक बहुत दब जाता है। इस दृष्टि से शूद्र की सेवा कर्म में विवेक की प्रधानता न होकर आज्ञा पालन की प्रधानता रहती है। आज्ञा समन सुसाइब सेवा, इसलिए चारों वर्णों की आज्ञा के अनुसार सेवा करना, सुख सुविधा जुटा देना शूद्र के लिए स्वाभाविक होता है। शूद्रों के कर्म परिचर्यात्मक अर्थात सेवा स्वरूप होते हैं, उनके शारीरिक, सामाजिक, नागरिक, ग्रामणिक आदि सब के सब कर्म ठीक तरह से संपन्न होते हैं, जिससे चारों ही वर्णों के जीवन निर्वाह के लिए सुख सुविधा, अनुकूलता और आवश्यकता की पूर्ति होती है। स्वाभाविक कर्मों का तात्पर्य, चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात परिवर्तन रहित है, और प्रकृति स्वाभाविक ही विकारी अर्थात परिवर्तनशील है। अतः दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न होने से इनका संबंध स्वाभाविक नहीं है, किंतु चेतन ने प्रकृति के साथ अपना संबंध मानकर उस संबंध की सद्भावना कर ली, अर्थात संबंध है ऐसा मान लिया। इसी को गुणों का संग कहते हैं, जो जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, 13 का 21। इस संग के कारण गुणों के तारतम्य से जीव का ब्राह्मण आदि वर्ण में जन्म होता है। गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म स्वाभाविक सहज होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए सम दम आदि, क्षत्रिय के लिए शौर्य तेज आदि, वैश्य के लिए खेती गोरक्षा आदि और शूद्र के लिए सेवा, ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। तात्पर्य यह है कि चारों वर्णों के इन कर्मों को करने में परिश्रम नहीं होता, क्योंकि गुणों के अनुसार स्वभाव और स्वभाव के अनुसार उनके लिए कर्मों का विधान है। इसलिए इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है। मनुष्य इन स्वाभाविक कर्मों को जब अपने लिए, अपने स्वार्थ भोग और आराम के लिए करता है, तब वह उन कर्मों से बंध जाता है। जब उन्हीं कर्मों को स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक संसार के हित के लिए करता है, तब कर्मयोग हो जाता है और उन्हीं कर्मों से सब संसार में व्यापक परमात्मा का पूजन करता है, अथवा भगवत परायण होकर केवल भगवत संबंधी जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि कर्म करता है, तब वह भक्ति योग हो जाता है। फिर प्रकृति के गुणों का सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर केवल एक परमात्म तत्व रह जाता है, जिसमें सिद्ध महापुरुष के स्वरूप की स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता, अखंडता, निर्विकारता की अनुभूति रह जाती है। ऐसा होने पर भी उसके शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अपने अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार निर्लिप्तता पूर्वक शास्त्र विहित कर्म स्वाभाविक होते हैं, जो संसार मात्र के लिए आदर्श है। प्रभु की तरफ आकृष्ट होने से प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहता है, जो अनंत आनंद स्वरूप है। जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से, ऊंच नीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं, वे सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। अतः स्थूल शरीर की दृष्टि से विवाह, भोजन आदि कर्म जन्म की प्रधानता से ही करने चाहिए, अर्थात अपनी जाति या वर्ण के अनुसार ही भोजन, विवाह आदि कर्म होने चाहिए। दूसरी बात, जिस प्राणी का सांसारिक भोग, धन, मान, आराम, सुख आदि का उद्देश्य रहता है, उसके लिए वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म करना, वर्ण की मर्यादा में चलना आवश्यक हो जाता है। यदि वह वर्ण की मर्यादा से नहीं चलता तो उसका पतन हो जाता है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, परंतु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसार के भोग आदि नहीं है, उसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार विनिमय आदि भगवत संबंधी मुख्य होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के पारमार्थिक भाव, आचरण आदि की मुख्यता है, वहां जाति या वर्ण की नहीं है। तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, वह भगवत संबंधी कार्यों को मुख्यता से करते हुए भी वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूजन बुद्धि से केवल भगवत प्रीत्यर्थ ही करता है। आगे 46वें श्लोक में भगवान ने बड़ी श्रेष्ठ बात बताई है कि जिससे संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का ही लक्ष्य रखकर उसके प्रीत्यर्थ ही पूजन करने से अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म किए जाए, इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। देवता, असुर, पशु, पक्षी आदि का स्वतः अधिकार नहीं है, परंतु उनके लिए भी परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है, कारण कि सभी परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं। प्राणी मात्र का भगवान पर पूरा अधिकार है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि आपस के व्यवहार में अर्थात रोटी बेटी और शरीर आदि के साथ बर्ताव करने में तो जन्म की प्रधानता है और परमात्मा की प्राप्ति में भाव विवेक और कर्म की प्रधानता है। इसी आशय को लेकर भागवतकार ने कहा है कि यस्य यल्लक्षणम् प्रोक्तम् पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम् तदन्यत्राभिदृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। सातवां स्कंद 11वां अध्याय 35वां श्लोक। अर्थात जिस मनुष्य के वर्ण को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिल जाए तो उसे भी उसी वर्ण का समझ लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण के शमदम आदि के जितने लक्षण हैं, ये लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसी में हो तो जन्म मात्र से नीचा होने पर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही महाभारत में युधिष्ठिर और नहुष के संवाद में आया है कि जो शूद्र आचरणों में श्रेष्ठ है उस शूद्र को शूद्र नहीं मानना चाहिए और जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित है उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। शूद्रे तु यद् भवेत् लक्ष्मे द्विजे तच्च न विद्यते न वै शूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण है। वहां कर्मों की प्रधानता ली गई है, जन्म की नहीं। शास्त्रों में ऐसे वचन आते हैं उन सब का तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्ण वाला साधारण से साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, वह उसी वर्ण में रहता हुआ सम दम आदि सामान्य धर्म है उन सब का सांगोपांग पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठता को प्रकट कर सकता है। परंतु वहां नीच वर्ण में रहकर भी वह अपनी नई उन्नति कर सकता है। उस नई उन्नति में प्रोत्साहित करने के लिए ही शास्त्र वचनों का आशय मालूम देता है कि नीच वर्ण वाला भी नई उन्नति करने में हिम्मत न हारे। ऊंचे से ऊंचे वर्ण वाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता, उसको भी अपने वर्णोचित काम करने के लिए शास्त्रों में प्रोत्साहित किया जाए। जैसे ब्राह्मणस्य देवयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 17वां अध्याय 42वां श्लोक। जिन ब्राह्मणों का खान पान आचरण सर्वथा भ्रष्ट है उन ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर नहीं करना चाहिए, ऐसी स्मृति में बात आती है। पाखंडिनो विकर्म स्थान बैडाल वृत्तिकान छटान हेतुकान वक वृत्तिश्च वांग मात्रेनापि नार्चयेत। पाखंडी हो, धर्म विरुद्ध हो, बैडाल वृत्ति वाले हो, शट हो, तर्क वितर्क करने वाले हो, बगुले की वृत्ति वाले हो, ऐसे ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर न करें। परंतु जिनके आचरण श्रेष्ठ है, जो भगवान के भक्त हैं, उन ब्राह्मणों की भागवत आदि पुराणों में और महाभारत रामायण आदि इतिहास ग्रंथों में बहुत महिमा आई है। भगवान का भक्त चाहे कितनी नीची जाति का क्यों न हो, वह भक्तिहीन विद्वान ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ओ बतस्व बचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सुष्णरार्या ब्रह्मानूचुर नाम गृणंती एते। श्रीमद् भागवत 3वां स्कंद 33वां अध्याय 7वां श्लोक। ऐसे ही 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी प्रहलाद जी ने कहा है, विप्रा दिशत गुणयुता अरविंद नाभ पादार विंद विमुखात स्वपतम वरिष्ठम मन्नी तदार्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमान। ब्राह्मण को विराट रूप भगवान का मुख, क्षत्रिय को हाथ, वैश्य को ऊरु माने मध्य भाग और शूद्र को पैर बताया गया है। ब्राह्मण को मुख बताने का तात्पर्य है उनके पास ज्ञान का संग्रह है, इसलिए चारों वर्णों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना ये मुख का ही काम है। इस दृष्टि से ब्राह्मण ऊंचे माने गए। क्षत्रियों को हाथ बताने का तात्पर्य है कि वे चारों वर्णों की शत्रुता से रक्षा करें। रक्षा करना मुख्य रूप से हाथों का ही काम है। जैसे शरीर में फोड़ा फुंसी आदि हो जाए तो हाथों से ही रक्षा की जाती है। शरीर पर चोट आती है तो रक्षा के लिए हाथ ही आड़े आते हैं और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर हाथों से ही चोट पहुंचाई जाती है। आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथी टिकते हैं, इसलिए क्षत्रिय हाथ हो गए। अराजकता फैल जाने पर तो जन धन आदि की रक्षा करना चारों वर्णों का काम है। वैश्य को मध्य भाग कहने का तात्पर्य है कि जैसे पेट में अन्न जल औषध आदि डाले जाते हैं तो उनसे शरीर के संपूर्ण अवयवों को खुराक मिलती है और सभी अवयव पुष्ट होते हैं। ऐसी वस्तुओं का संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहां जिस चीज की कमी हो वहां पहुंचाना, प्रजा को किसी चीज का अभाव न होने देना वैश्यों का काम है। पेट में अन्न जल का संग्रह सब शरीर के लिए होता है और साथ में पेट को भी पुष्टि मिल जाती है, क्योंकि मनुष्य केवल पेट के लिए ही पेट नहीं भरता। ऐसे ही वैश्य केवल दूसरों के लिए ही संग्रह करे, केवल अपने लिए नहीं। वह ब्राह्मण आदि को दान देता है, क्षत्रियों को टैक्स देता है, अपना पालन करता है और शूद्रों को मेहनताना देता है। इस प्रकार वह सबका पालन करता है। यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि गौरक्ष और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा। शूद्र को चरण बताने का तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीर को उठाए फिरते हैं और पूरे शरीर की सेवा चरणों से ही होती है, ऐसे ही सेवा के आधार पर ही चारों वर्ण चलते हैं। शूद्र अपने सेवा कर्म के द्वारा सबके आवश्यक कार्यों की पूर्ति करता है। उपर्युक्त विवेचन में एक ध्यान देने की बात है कि गीता में चारों वर्णों के उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है जो कर्म स्वतः होते हैं, अर्थात उनको करने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। चारों वर्णों के लिए और भी दूसरे कर्मों का विधान है, उनको स्मृति ग्रंथों में देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहार्हसि। 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। वर्तमान में चारों वर्णों में गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्णों के समुदायों को इकट्ठा करके अलग अलग समुदाय में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय में सम दम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने क्षत्रिय वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। क्षत्रिय समुदाय में शौर्य तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। वैश्य समुदाय में व्यापार करना, धन का उपार्जन करना, धन को पचाना अर्थात धन का भवका ऊपर से न दिखने देना आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। शूद्र समुदाय में सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी उतनी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य समुदाय में नहीं मिलेगी। तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादा रहित और उच्छृंखल होने पर भी उनके स्वभावज कर्म उनके समुदायों में विशेषता से देखने में आते हैं, अर्थात वह चीज व्यक्तिगत न होकर समुदायगत देखने में आती है। जो लोग शास्त्र के गहरे रहस्य को नहीं जानते वह कह देते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है ऐसा लिखकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कह दिया। जिनके पास राज्य था उन्होंने ब्राह्मणों से कहा क्यों महाराज हम लोग कुछ नहीं किया, तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी हैं, आप लोग दो नंबर में हैं। वैश्यों ने कहा ब्राह्मणों से क्यों महाराज हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी आपकी, ब्राह्मणों ने कहा हाँ हाँ आप लोग हमारे तीसरे नंबर में हैं। जिनके पास न राज्य था न धन था वे ऊंचे उठने लगे, तो ब्राह्मणों ने कह दिया आपके भाग्य में राज्य और धन लिखा नहीं है, आप लोग तो इन ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करो, इसलिए चौथे नंबर में आप लोग हैं। इस तरह सबको भुलावे में डालकर विद्या राज्य और धन के प्रभाव से अपनी एकता करके चौथे वर्ण को पद दलित कर दिया। यह लिखने वालों का अपना स्वार्थ और अभिमान ही है। इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने ब्राह्मण धर्म के लिए ऐसा नहीं लिखा कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, इसलिए उनको बड़े आराम से रहना चाहिए, धन संपत्ति से युक्त होकर मौज करनी चाहिए। प्रत्युत ब्राह्मणों के लिए तो ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिए, कष्ट सहन करना चाहिए, तपश्चर्या करनी चाहिए, गृहस्थ में रहते हुए भी उनको धन संग्रह नहीं करना चाहिए, अन्न का संग्रह भी थोड़ा ही होना चाहिए, कुंभी धान्य अर्थात एक घड़ा भरा हुआ अनाज हो, लौकिक भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और जीवन निर्वाह के लिए किसी से दान भी लिया जाए तो उसका काम करके अर्थात यज्ञ होम जप पाठ आदि करके ही लेना चाहिए, गोदान आदि लिया जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण को श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहे तो वह श्राद्ध के पहले दिन दे, जिससे ब्राह्मण उसके पितरों का अपने में आह्वान करके रात्रि में ब्रह्मचर्य और संयम पूर्वक रह सके। दूसरे दिन वह यजमान के पितरों का पिंडदान तर्पण ठीक विधि विधान से करवाए, उसके बाद वहां भोजन करे, निमंत्रण भी एक ही यजमान का स्वीकार करे और भोजन भी एक ही घर का करे। श्राद्ध का अन्न खाने के बाद गायत्री जप आदि करके शुद्ध होना चाहिए। दान लेना श्राद्ध का भोजन करना ब्राह्मण के लिए ऊंचा दर्जा नहीं माना है, ब्राह्मण का ऊंचा दर्जा तो त्याग में है। वे केवल यजमान के पितरों का कल्याण करने की भावना से ही श्राद्ध का भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं, स्वार्थ की भावना से नहीं, अतः यह भी उनका त्याग ही है। ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए रित अमृत मृत सत्यानृत और प्रमृत ये पांच वृत्तियां बताई हैं। पहला रित वृत्ति, ये सर्वोच्च वृत्ति है, इसको शीलोंच वृत्ति या कपोत वृत्ति भी कहते हैं। खेती करने वाले खेत में से धान काट कर ले जाए, उसके बाद वो अन्न ऊमी सिट्टा आदि पृथ्वी पर गिरा पड़ा हो वह भूदेवों का होता है, अतः उनको चुन चुन कर निर्वाह करना शीलोंच वृत्ति है। अथवा धान्य मंडी में जहां धान्य तोला जाता है वहां पृथ्वी पर गिरे हुए दाने भूदेवों के होते हैं, अतः उनको चुनकर निर्वाह करना कपोत वृत्ति है। दूसरा अमृत वृत्ति, बिना याचना किए और बिना इशारा किए कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाह मात्र की वस्तु लेना अमृत वृत्ति है, इसको अयाचित वृत्ति भी कहते हैं। तीसरा मृत वृत्ति, सुबह भिक्षा के लिए गांव में जाना और लोगों को बार तिथि मुहूर्त आदि बताकर किस रूप में क्या काम करना है ये संकेत करके भिक्षा में जो मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करना मृत वृत्ति है। चौथा सत्यानृत वृत्ति, व्यापार करके जीवन निर्वाह करना सत्यानृत वृत्ति है। पांचवा प्रमृत वृत्ति, माने उपर्युक्त चारों वृत्तियों से निर्वाह न हो तो खेती करें, पर वह भी कठोर विधि विधान से करें, जैसे एक बैल से हल न चलाए, धूप के समय हल न चलाए आदि आदि, यह प्रमृत वृत्ति है। उपर्युक्त वृत्तियों में से किसी भी वृत्ति से निर्वाह किया जाए उसमें पंच महायज्ञ अतिथि सेवा करके यज्ञ शेष भोजन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता पर विचार करते हैं तो ब्राह्मण के लिए पालनीय जो नौ स्वाभाविक धर्म बताए हैं उनमें जीविका पैदा करने वाला एक भी धर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए सात स्वाभाविक धर्म बताए, उनमें युद्ध करना और शासन करना, ये दो धर्म कुछ जीविका पैदा करने वाले हैं। वैश्य के लिए तीन धर्म बताए, खेती गोरक्षा और व्यापार, ये तीनों ही जीविका पैदा करने वाले हैं। शूद्र के लिए एक सेवाई धर्म बताया है जिसमें पैदा ही पैदा होती है। शूद्र के लिए खान पान जीवन निर्वाह आदि में भी बहुत छूट दी गई है। भगवान ने स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नर है 18:45 पदों से कितनी पवित्र बात कही है कि समदम आदि नौ धर्मों के पालन से ब्राह्मण का जो कल्याण होता है वही कल्याण शौर्य तेज आदि सात धर्मों के पालन करने से क्षत्रिय का होता है, वही कल्याण खेती गोरक्षा और व्यापार के पालन से वैश्य का होता है, और वही कल्याण केवल सेवा करने से शूद्र का हो जाता है। आगे भगवान ने एक विलक्षण बात बताई है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने वर्णोचित कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः 18:46। वास्तव में कल्याण वर्णोचित कर्मों से नहीं होता, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक पूजन से ही होता है। शूद्र का तो स्वाभाविक कर्म ही परिचर्यात्मक अर्थात पूजन रूप है, अतः उसका पूजन के द्वारा पूजन होता है, उसके द्वारा दुगनी पूजा होती है, इसलिए उसका कल्याण जितना जल्दी होगा उतना जल्दी ब्राह्मण आदि का नहीं होगा। शास्त्रकारों ने उद्धार करने में छोटे को ज्यादा प्यार दिया है, क्योंकि छोटा प्यार का पात्र होता है और बड़ा अधिकार का पात्र होता है। बड़े पर चिंता फिक्र ज्यादा रहती है, छोटे पर कुछ भी भार नहीं रहता। शूद्र को भार रहित करके उसकी जीविका बताई गई है और प्यार भी दिया गया है। वास्तव में देखा जाए तो जो वर्ण आश्रम में जितना ऊंचा होता है उसके लिए शास्त्रों के अनुसार उतने ही कठिन नियम होते हैं। उन नियमों का सांगोपांग पालन करने में कठिनता अधिक मालूम देती है, परंतु जो वर्ण आश्रम में नीचा होता है उसका कल्याण सुगमता से हो जाता है। इस विषय में विष्णु पुराण में एक कथा आती है। एक बार बहुत से ऋषि मुनि मिलकर श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए भगवान वेदव्यास जी के पास गए। व्यास जी ने उन सबको आदरपूर्वक बैठाया और फिर स्वयं गंगा में स्नान करने चले गए। गंगा में स्नान करते हुए उन्होंने कहा, कलयुग तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, शूद्रों तुम धन्य हो। जब व्यास जी स्नान करके ऋषियों के पास आए तो ऋषियों ने कहा, महाराज आपने कलयुग स्त्रियों और शूद्रों को धन्यवाद कैसे दिया? तो उन्होंने कहा कि कलयुग में अपने धर्म का पालन करने से स्त्रियों और शूद्रों का कल्याण जल्दी और सुगमता पूर्वक होता है। यह एक बात और सोचने की है कि जो अपने स्वार्थ का काम करता है वह समाज में और संसार में आदर का पात्र नहीं होता। समाज में ही नहीं, घर में भी जो व्यक्ति पेटू और चट्टू होता है उसकी दूसरे लोग निंदा करते हैं। ब्राह्मणों ने स्वार्थ दृष्टि से अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा श्रेष्ठता की बात नहीं कही है, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए त्याग बताया है। सात्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, प्रत्युत दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का आदर करते हैं। तात्पर्य है कि ब्राह्मणों ने कभी अपने स्वार्थ और अभिमान की बात नहीं कही। यदि वे स्वार्थ और अभिमान की बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते, संसार में और शास्त्रों में आदर न पाते। वे जो आदर पाते हैं वो त्याग से ही पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को शास्त्रों का गहरा अध्ययन करके उपर्युक्त सभी बातों को समझना चाहिए और ऋषि मुनियों पर, शास्त्रकारों पर झूठा आक्षेप नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच वर्णों में प्राणियों का जन्म मुख्य रूप से गुणों और कर्मों के अनुसार होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह 4 का 13। परंतु ऋणानुबंध, शाप, वरदान, संग आदि किसी कारण विशेष से भी ऊंच नीच वर्णों में जन्म हो जाता है। उन वर्णों में जन्म होने पर भी वे अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। यही कारण है कि ऊंचे वर्ण में उत्पन्न होने पर भी उनके नीच आचरण देखे जाते हैं, जैसे धुंधकारी आदि, और नीच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर, कबीर, रैदास आदि। आज जिस समुदाय में जातिगत, कुल परंपरागत, समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र विपरीत दोष आए हैं, उनको अपने विवेक, विचार, सत्संग, स्वाध्याय आदि के द्वारा दूर करके अपने में स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता लानी चाहिए, जिससे अपने मनुष्य जन्म का ध्येय सिद्ध हो सके।